जय माँ। आजकल बहुत चर्चा का विषय है कि राम राज्य कब आएगा, सतयुग कब आएगा, भगवान का राज्य कब आएगा। अक्सर लोग इस तरह के प्रश्न भी करते हैं कि संसार में ये पीड़ा है, दुख है, ईविल है, भगवान इसको तत्क्षण समाप्त क्यों नहीं कर देते, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम ये बात करते हैं तो एक मौलिक इसमें समस्या है। समस्या ये है कि हम सोचते हैं कि ये एक मैजिकली भगवान ओमनीपोटेंट हैं, ओमनीसिएंट हैं, मैजिकली वो सब कुछ कर देंगे और हमारी ओर से हम कुछ करें या ना करें या भगवान के काम को रेजिस्ट करें, अवरोध डालें, लेकिन भगवान की ये ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको करना है। लेकिन सच ये है, इसको हम किसी भी एंगल से देखें, कि मनुष्य का अपना कर्म है। सरेंडर का अर्थ ये नहीं है कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, मेरे मन में जो विचार आएंगे मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरे हृदय में जो भावनाएं उठेंगी एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं कहूँगा मैंने सरेंडर कर दिया, अब सब कुछ अपने आप होगा। अपने आप संसार में कुछ नहीं होता है। और ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये विकास का एक विधान, एक प्रोसेस, एक विधि है। फाइनल ट्रूथ में सब भगवान करते हैं, सच है, लेकिन वो एक उस भूमि का सत्य है जिस भूमि पर हम अभी खड़े नहीं हैं। और वो एक अंश सत्य है। जब हम ये कहते हैं कि भगवान सब कर देंगे तो इसका अर्थ ये कि पहला सत्य है कि सब कुछ जो संसार में होता है उसका जो ओरिजिनल इम्पल्शन है, शक्ति है, ज्ञान है, वो वहीं से प्रारंभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनुष्य को उसको सही ढंग से ग्रहण करना, उसके अनुसार अपने जीवन को चेंज करना, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। ये इसका प्रारंभ भी एक बहुत हाई प्रारंभ है, जहां हम अपने लिए कुछ नहीं, केवल इस भाव से जीवन को जीते हैं कि हमारा जीवन भगवान के लिए है। और फिर वो एक लंबी यात्रा है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, अपने अंदर आती हैं, बाहर से आती हैं, जीवन में आती हैं, और उन सबके थ्रू हमको जाना पड़ता है। और ये चीज़ हम माता जी के जीवन में देख रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मनुष्य जैसा है वैसा रहा तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री अरविंद सब आके एक साथ अगर बैठ जाएं तो भी समस्या तो वही रहेगी। राम राज्य की यही समस्या थी ना, समस्या राम जी में नहीं थी, ना सीता माता में थी, समस्या तो उस वस्त्रक में थी, उस धोबी में थी, समस्या उस समाज में थी जहाँ लोग अपनी विचारधारा को ना बदलना चाहते थे ना इवॉल्व करना चाहते थे, क्योंकि वो बंधे हुए थे एक पास्ट से, उनकी जो सोच थी, समझ थी, बुद्धि थी। तो इसीलिए भगवान आते हैं, अपना काम करके थोड़ी देर के लिए विड्रॉ करते हैं, यही होता है हर बार। और वो विड्रॉ इसलिए करते हैं, पीछे चले जाते हैं, ताकि अब उन्होंने जो करना था वो उन्होंने कर दिया, अब हम सब उसके भागीदार बने। इसको एक तीसरे एंगल से भी हम अगर देखें तो यदि सब कुछ भगवान है, जैसा हम लोग ये मानते हैं कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सब कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक भगवान है, तो हमको तो फिर भागीदारी निभानी है अपनी। या तो हम ये एटीट्यूड ले लें कि भगवान वहाँ है और हम यहाँ हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ करेंगे, तब तो ये ड्यूअलिज्म हो गई कि हम अलग हैं, भगवान अलग हैं। और यदि हम ये अप्रोच लेते हैं कि भगवान ही सब कुछ हैं और भगवान ही सब करते हैं, तो हमारी भी ऑटोमेटिक भागीदारी हो जाती है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर भी है और हम सब में व्याप्त हैं। तो यहाँ पर हम जो तीसरा बिंदु है उससे आगे बढ़ेंगे। माता जी इसी चीज़ को बड़े सुंदर ढंग से अपनी, आज हम लोग जनवरी 1916 की प्रार्थनाएं पढ़ेंगे, जिसमें माँ बता रही हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक भागीदारी है। और वो भागीदारी क्या है कि उसके अंदर पहले उसको भगवान का साम्राज्य स्थापित करना है। यदि हम ये नहीं कर सकते तो राम राज्य को केवल हम कल्पना, बहुत सुंदर बातें हैं, कितना अच्छा है, हमारे पास्ट में ये हुआ था, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पास्ट में माता सीता को वनवास भी दे दिया गया था, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ये काम पहले भगवान का राज्य हमारे अंदर स्थापित होगा, उसके बाद गवर्नमेंट बदलेगी। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदल जाए, पार्लियामेंट में कुछ एक्ट इनएक्ट हो जाए, जुडिशरी चेंज हो जाए, वो चेंज हो जाए, लेकिन हम वही पशुतुल्य रहेंगे और जीवन बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो कल्पना करना एक मोस्ट इलॉजिकल चीज है, ये तो एक किसी तर्क सम्मत नहीं है। तो अब स्वयं पर पहले, जिसको श्री अरविंद ने एक शब्द यूज किया है स्वराज, स्वराज के दो अर्थ हैं, एक है अपने ऊपर शासन, किसका शासन, हमारे अहंकार का शासन नहीं, क्योंकि अहंकार से जब हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, माइंड भी कंट्रोल करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन माइंड का जो कंट्रोल है, क्योंकि माइंड इग्नोरेंस में है, उसको तो ये भी नहीं पता है सच पूछो तो क्या कंट्रोल करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसकी धारणाएं हैं उसके अनुसार वो करता है, या कुछ सामाजिक चीज़ें होती हैं उसके अनुसार करता है। लेकिन स्वराज का सच्चा अर्थ है कि भगवान का हमारे ऊपर राज्य स्थापित हो। ये चीज़ बाइबल में भी लिखी है कि किंगडम ऑफ हेवन को अगर आपको बनाना है तो पहले आपको उसको अपने अंदर स्थापित करना होगा, और यही चीज़ हम श्री राम की लीला में और श्री कृष्ण की लीला में देखते हैं कि पांडवों को कितनी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते, चेंज नहीं लाते, तो बाकी चीज़ों की बात करना बिल्कुल एक व्यर्थ बात है। तो अभी हम लोग प्रार्थना पढ़ेंगे माता जी की, पहले पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि माँ पृथ्वी के लिए साधना कर रही है, पृथ्वी का योग है ये, पृथ्वी को ले जाना दिव्यता की ओर, और साथ ही साथ इस पृथ्वी पर, पृथ्वी तत्व में दिव्यता का समाविष्ट होना और उसका रूपांतरण होना। तो अब माता जी पहले इसको अपने अंदर, जो कुछ भी माँ श्री अरविंद हम सबको बता रहे हैं, ये सब उन्होंने अपने अंदर ना केवल प्रयोग किए, अपने शरीर को पहले प्रयोगशाला बनाया है, उसके अंदर जो कुछ स्थापित हुआ, जो हम रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में देखते हैं और माता जी की प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में देखते हैं, जब उन्होंने अपने अंदर इन चीज़ों को स्थापित किया, फलीभूत किया, देखा उनकी सत्यता को, परखा, जाना, निश्चित हो गए, तब दूसरी लेबोरेटरी उनकी आश्रम है। तो आश्रम में उसी चीज़ का एक मिनिएचर लेबोरेटरी है। आश्रम में उन्होंने क्या किया, अपने अंदर जो कुछ उन्होंने, जिस सत्य को स्थापित किया, जो चीज़ उन्होंने रियलाइज़ करी, अब वो आश्रम में कुछ चुने हुए लोग, ये चुने हुए कौन है, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं मनुष्यता के, मनुष्य के अलग अलग टाइप होते हैं, वेराइटी होते हैं, तो हर एक वेराइटी का एक उन्होंने लिया है। ये कहानी बड़े सुंदर ढंग से राजा सत्यव्रत की कहानी से मिलती है, जब नोआ की आर्क, जो सत्यव्रत जो बनाते हैं नाव, और ये कल्प के अंत में जब प्रलय होती है, तो उसमें क्या विष्णु भगवान कहते हैं, हर तरह का एक एक तुम जीव अपने नाव में रख लो। देखिए इतनी सिंबॉलिक है कि एक एक प्रकार का जीव तुम नाव में रख लो, क्योंकि उसको आगे जा करके एक नए युग का प्रारंभ होना है। तो वैसे ही श्री माँ ने, श्री अरविंद ने एक एक प्रकार के मनुष्य को, तामसिक मनुष्य, राजसिक मनुष्य, सात्विक मनुष्य, अच्छे मनुष्य, बुरे मनुष्य, एक्सट्रीम गुड, एक्सट्रीम ईविल, आप जिस भी तरह से देखिए क्लासीफाई करिए, मनुष्यों की 10 श्रेणियां हैं, वानर, पशु, प्रमथ, पिशाच, राक्षस, असुर, मनुष्य, देव, मतलब मनुष्य मतलब नर, देव और देव के परे, ये सब को उन्होंने अपने पास बुलाया, ऋषिगण भी, सेज भी, संत महात्मा भी, और वैसे ही दुष्टगण भी। और इसीलिए माँ ने इस बार ये खेल पूरा बदल दिया है। आज ही कल कोई बात कर रहे थे कि दुर्गा पूजा प्रारंभ हो रही है आज महालया, तो पूछ रहे थे कि माँ ने ऐसा क्यों कहा है कि दुर्गा जी के सरेंडर करने की बात। तो अब जो हम लोग चंडी पाठ करते हैं या जो स्टैंडर्ड अभी भी हम करते हैं ना, नौ दुर्गा का आवाहन, वो कहाँ तक उचित है। जहाँ तक उचित अनुचित की बात है, अपनी अपनी श्रद्धा है, वो एक अलग बात है, हर व्यक्ति अलग अलग लेयर पे खड़ा है और उसके अनुसार वो जीवन को देख रहा है, उसके अनुसार वो जीवन को जी रहा है। लेकिन जहाँ तक इस योग की बात है, इसका औचित्य समाप्त हो गया है, क्योंकि जो हम पुरानी दुर्गा पूजा, एक परंपरागत जो दुर्गा पूजा है, उसमें क्या होता था कि दुर्गा जी आती हैं और वो जो असुर है उसको ढकेल देती हैं, हर बार उनको हर वर्ष वापस आना पड़ता है। क्यों वापस आना पड़ता है, क्योंकि असुर वापस आते हैं। क्यों आते हैं वापस, हम लोग बुलाते हैं। यहां तक करते हैं कि दुर्गा जी की एक और प्रार्थना चल रही है, बगल में महिषासुर का पंडाल लगा होता है, जहां पर गोलगप्पे से लेके बॉलीवुड के गाने और सब कुछ चल रहा होता है, हमारे अंदर भी यही चीज होती है। एक और, हम लोग साहब सुबह सुबह सबको मैसेज करते हैं हैप्पी दुर्गा पूजा, नव दुर्गा प्रारंभ हो रही है, महालया इत्यादि का लिंक, लेकिन हम एक दिन के केवल आधे दिन नहीं, एक घंटे के विचारों को देखें और भावनाओं को देखें, वास्तव में क्या हम तैयार हैं दुर्गा जी के आह्वान के लिए? डिवाइन की किंगडम की तो बात ही छोड़ दो, कितने हमारे स्वार्थ से भरे हुए विचार, लस्ट के विचार, ग्रीड के विचार, भय से भरे हुए, मतलब महिषासुर को पोषित किया हुआ है हमने, तो दुर्गा जी उनको धकेल देती हैं, चले जाते हैं, घुस जाते हैं, आपको अच्छा लगता है 5 दिन बाद, फिर हम लोग दुर्गा जी की उपस्थिति को संभाल नहीं पाते हैं तो विसर्जन कर देते हैं। ज्यादा दिन रहेंगी तो प्रॉब्लम होगी, आपको उतनी शुचिता चाहिए, वो डिवोशन चाहिए, फेथ चाहिए, नहीं है, इसलिए वो जो प्रोसेस है उसको बदल दिया है। ये दो जगह, दो कारण से मैं कह रहा हूं। एक, हम देखते हैं जब श्री अरविंद का विरचित दुर्गा स्त्रोत है, पूरा इंटरनलाइज कर लिया उन्होंने उस चीज को कि माता दुर्गा हमारे अंदर, हमारे अंदर पहले परिवर्तन हो, हमारे अंदर असुर का जो एक तत्व है वो आए और देव का, देवता का तत्व आए, असुरों का उद्यम और बल और देवताओं का चरित्र प्रकाश, और फिर वो कहते हैं कि अब हम तुम्हारा विसर्जन नहीं करेंगे, बिल्कुल अपने ही अंदर जो ग्रोथ। दूसरा, माताजी जब कहती हैं कि दुर्गा को आई आस्क्ड हर टू सरेंडर टू द सुप्रीम, तो उसका अर्थ ये है कि अब वो इन असुरों को जो भाग जाते थे, ये उनको रूपांतरण करना चाह रही हैं। कहाँ ये भाग के छिपते थे? हमारी कोशिकाओं में छिपते थे। सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा, अब इसको आप ऐसे देखिए कि बॉडी के अंदर ये दोनों एक्टिविटी होती हैं, एक होती है जो बॉडी को में नई सेल्स को बिल्ड करती है, लेकिन पुराने पैटर्न पर बिल्ड करती है। बॉडी की सेल्स के ही अंदर ये काम चलता है, ऐसे तत्व हैं जो उसको डीजेनरेट करते हैं, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, यानी शरीर के ही अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर को एक ओर जीवन देती हैं, दूसरी ओर मृत्यु की ओर ले जाती हैं। तो देखा जाए तो इस संग्राम का जो अल्टीमेट, ऑब्वियसली ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, आप अगर बोलोगे सेल के स्ट्रक्चर में हमको देखना है तो नहीं दिखाई देगा, जैसे सेल के स्ट्रक्चर में हमारे विचारों का प्रभाव होता है, हमारी श्रद्धा का प्रभाव होता है, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि कहां पर है वो श्रद्धा वाला पॉइंट, तो वी वोंट सी, पर उसके एक्शन को हम जान सकते हैं। तो ये सेल्स के अंदर ये जो छिपे हुई हैं ये शक्तियां, उसमें और उसके नीचे अवचेतन और निश्चेतन, वहां पे जाके माता जी श्री अरविंद काम करते हैं, और उन्होंने ये काम बहुत पहले से प्रारंभ किया हुआ है। 1956 में तो उन्होंने उसको मैनिफेस्ट किया, और अब वो धीरे धीरे मनुष्यों के अंदर धीरे धीरे ये प्रारंभ हो चुका है। कई लोग डाउट करते हैं, अब डाउट करने वाला तो व्यक्ति पूरे जीवन डाउट कर सकता है, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत लोग इसमें आगे बढ़ चुके हैं रूपांतरण की दिशा में। जो डाउट करना चाहते हैं वो जीवन भर डाउट कर सकते हैं, लेकिन देर आर पीपल हु आर ऑलरेडी अहेड ऑन द पाथ। तो इसलिए माँ कहती है लेट अस नॉट बी लैगर्ड्स ऑन द वे, हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मुझे क्या अनुभव हो रहा है, इन चीज़ों से नहीं, उन्होंने पथ दिया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, उस पथ पर हमको चलते जाना है। तो उसी पथ के कड़ी में अब हम January 15, 1916 की एक प्रार्थना है, ओ दाओ हुम आई कैन कॉल माई गॉड, ये तो बहुत कॉमनली यूज, माई गॉड, माई गॉड किसको हम कह रहे हैं? माँ कह रही हैं क्योंकि गॉड तो सब कुछ है, और वो सब कुछ के परे भी हैं, अनोएबल हैं। तो जब हम भगवान से संबंध जोड़ते हैं तो दो प्रकार के संबंध जोड़ सकते हैं, एक है जो भगवान जो इस सब सृष्टि के परे हैं, परात्पर हैं, और एक भगवान है जो इस सृष्टि के अंदर कार्य कर रहे हैं, एक भगवान है जो हमारे अंदर, ये सब एक ही भगवान है, ये अलग अलग नहीं है, लेकिन ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं। अब जब श्री अरविंद की बात, एक माँ की पेंटिंग है, और उस पेंटिंग अगर हम देखें, स्केच है और पेंटिंग भी है, उसको आप देखेंगे तो लगता है कि वो श्री अरविंद का ही मानो चेहरा है, और माता जी ने लिखा है द डिवाइन इमर्जिंग फ्रॉम द इनकॉन्शियंट, और श्री अरविंद के बारे में भी माँ यही कहती हैं कि ही इज़ ए इमिनेशन ऑफ द सुप्रीम, जिन्होंने स्वयं को डाल दिया है इस निश्चेतना के अंदर, और वो तब से कार्य कर रहे हैं ना जाने मिलियंस ऑफ ईयर्स से, कि धीरे 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 ये जागृत हो जाए हो और दिव्यता में रूपांतरित हो। ये आज का काम नहीं है, ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है। इसलिए माँ कह रही हैं, ओ दाओ हु माई कॉल माई गॉड, आई कैन कॉल माई गॉड, दाओ हु आर द पर्सनल फॉर्म ऑफ द इटर्नल ट्रांसेंडेंट। वही जो शाश्वत सनातन सत्य हैं, उन्हीं का एक तत्व है जो विद्यमान है, उन्हीं का एक रूप है जो इस सृष्टि के अंदर समाया हुआ है। सो ही इज द पर्सनल फॉर्म ऑफ द इटर्नल ट्रांसेंडेंट कॉज सोर्स एंड रियलिटी ऑफ माई इंडिविजुअल बींग हु थ्रू आउट दी सेंचुरीज एंड द मिलेनियम्स हैज स्लोली एंड सटली नीडेड दिस मैटर दैट वन डे इट माइट कॉन्शियसली बी आइडेंटिफाइड विद दी एंड नो लॉन्गर ऑट एल्स दैन दाओ। और इसीलिए माँ बताती हैं फर्स्ट अवतार कौन है, वही जो भगवान ने अपने ही अंदर से एक तत्व को या एक एस्पेक्ट को, एक रूप को उन्होंने निश्चेतना की गुफा में छिपा दिया। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं और सावित्री का प्रारंभ भी वहीं से होता है। वो भगवान जो अंधकार में स्वयं को पूरी तरह छिपा देते हैं और धीरे 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 जब वो बाहर आते हैं, और जैसे जैसे बाहर आते हैं संसार में प्रकाश बढ़ता है और धीरे धीरे एक के बाद एक जड़ जगत के अंदर से संभावनाएं प्रकट होती हैं, नई नई जाति प्रजाति प्रकट होती हैं और फिर अंततः वो मनुष्य को लांग करके दिव्य मानव का प्रकटन होगा। तो ये अवतार का एक अलग ढंग से चित्रण है। अवतार क्योंकि वह जिन्होंने अपने आप को इस जड़ तत्व में डाल दिया है और वो इस जड़ तत्व को धीरे धीरे नीडिंग इज नीडेड मैटर, मतलब जैसे आटे को गूंथा जाता है। हम लोग चाहते हैं कि चपाती तैयार हो जाए, पहले करेक्ट कंसिस्टेंसी तो हो, ज़्यादा पानी रहेगा, सॉफ्ट होगा आटा, तो भगवान को तो पहले और उसमें कॉन्शियसनेस डालनी पड़ेगी तैयार करने के लिए। ज़्यादा कड़ा हो जाएगा तो भी चपाती नहीं बनेगी। तो अगर हम अपनी चेतना को इस ढंग से लें कि भगवान को इसमें से बहुत सुंदर एक टेस्टी रोटी बनानी है, तो यदि हमारे अंदर बहुत ही सॉफ्ट शक्तिहीन है, थोड़ी सी बात से परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, टूट जाते हैं, तो अभी तो तैयारी नहीं है। और अगर हम दूसरा लें कि हम बड़े रिजिड हैं, बहुत हार्ड हैं, तो भी हम तैयार नहीं हैं। तो माने वर्ड यूज किया है नीडेड मैटर, नीडेड के एन ई ए डी ए डी, धीरे धीरे उसको गूंथा जा रहा है। तो बहुत सारी जीवन में जो हमारे जीवन में चीज़ें होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं हमको स्ट्रांग बनाने के लिए। और यदि हम रिजिड और हार्ड हो गए, जिसको हम स्ट्रांग समझते हैं, तो कई चीज़ें होती हैं जो हमारी रिजिडिटी को तोड़ने के लिए होती है। तो देखिए दो सुरस्य धारा, यदि हम बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत कोमल हैं, बहुत नाजुक हैं, तो भी वो मिट्टी तैयार नहीं है। और यदि हम बहुत कठोर हैं, उसको हम शक्ति या बल समझ रहे हैं, तो भी मिट्टी तैयार नहीं है। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में कहते हैं सौम्य और रौद्र, ये दोनों एस्पेक्ट एक मनुष्य के अंदर एक साथ, ये गुण हम श्री राम में देखते हैं और श्री कृष्ण में भी देखते हैं, देखिए श्री अरविंद में भी देखते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये दोनों तीनों अवतारों में हम ये दोनों तत्व एक साथ देखते हैं। सौम्य इतने कि श्री अरविंद सब कुछ क्षमा कर दें, और उनका रौद्र रूप दिखाई नहीं देता है बाहर से। जैसे कृष्ण जी जब चला रहे हैं रथ, तो केवल अर्जुन ने देखा था उस रौद्र रूप को। और श्री अरविंद के केस में या श्री अरविंद के लीला में इस रौद्र रूप को ब्रिटिश सरकार समझ गई थी, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने कहा था द वन मोस्ट डेंजरस मैन इन इंडिया, इसलिए उन्होंने उनको पकड़ करके अलीपुर जेल में डाला था। दोनों एस्पेक्ट उनको पता था कि ये ऐसा व्यक्ति है जो एक संकल्प मात्र से लोगों को जगा सकता है और संकल्प मात्र से हमारे एम्पायर की नींव हिला सकता है। इंट्यूटिवली उनको ये बात पता थी और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई अपनी कही हुई बात नहीं जा रही है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पे इस पर पूरा डिस्कशन हुआ था। लेकिन वैसे अगर आप देखें तो श्री अरविंद अपार क्षमाशील, यही चीज हम देखते हैं श्री राम के जीवन में भी, सौम्य और रौद्र। तो जो भगवान धीरे धीरे इस मिट्टी को बिल्कुल सटीक तैयार कर रहे हैं, नीडेड मैटर, क्यों कर रहे हैं? सो दैट वन डे इट माइट कॉन्शियसली बी आइडेंटिफाइड विद दी एंड नो लॉन्गर ऑट एल्स देन दाओ, ताकि एक दिन पूरी तरह ये जड़ तत्व आपके साथ तादात्म हो सके इसका. ओ दाओ हुएस्ट अपियर्ड टू मी इन ऑल दाई डिवाइन स्प्लेंडर. माँ बता रही हैं, बताती हैं कि उनको जब जब सुप्रीम का दर्शन हुआ है, सुप्रीम जो इस वहाँ भी और जिन्होंने इस धरती के अंदर गर्भ में जाके फर्स्ट अवतार जो इस धरती के ऊपर जो काम कर रहे हैं, दिस इंडिविजुअल बीइंग इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफर्स इटसेल्फ टू दी इन एन एक्ट ऑफ सुप्रीम एडोरेशन. अब यहाँ पर हम लोगों की को क्या करना है, पहले कंप्लीट ऑफरिंग. ऑफरिंग के मार्ग में क्या आती है? डाउट्स. हम ऑफर कर रहे हैं लेकिन भगवान की तरफ से क्या ऑफर है? ऑफरिंग तो तब होती है जब ये होते हैं कि भगवान का कोई ऑफर हो या ना हो, जॉय में दिया जा रहा है, बाकी तो व्यापार होता है. तो ये व्यापार से जो अप्रोच करते हैं भगवान को, भगवान उनको वह देते हैं जो एक व्यापारी चाह रहा है. एक श्री अरविंद की बहुत सुंदर एक चंपकलाल जी को लेटर है जिसमें कहते हैं, इट इज़ द लेसन ऑफ लाइफ दैट एवरीथिंग फेल्स ए मैन एक्सेप्ट द डिवाइन इफ ही गिव्स हिमसेल्फ एंटायरली टू द डिवाइन. ये इफ एक कंडीशन है और वो गिविंग किसी कैलकुलेशन से नहीं की जाती है. तो माँ पहली चीज कह रही है, शेष निशेष भगवान के चरणों में समर्पित कर दी है. निश्चित रूप से इसमें श्रद्धा चाहिए, निश्चित रूप से इसमें साहस चाहिए, क्योंकि हमारी मूल प्रवृत्ति, नेचुरल प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम चाहते हैं हमको क्या मिलने वाला है. और हम अगर ऐसा कहते भी नहीं है तो कुछ साल बाद हम मॉनिटर करते हैं हमको क्या मिला, फिर देखते हैं पड़ोसी को क्या मिला इत्यादि इत्यादि. तो ये जो सेल्फ गिविंग है, ऑफर है, वो केवल भगवान के कार्य के लिए प्रयोजन से. ऑफर्स इट सेल्फ टू दी इन एन एक्ट ऑफ सुप्रीम एडोरेशन. इट एस्पायर्स इन इट्स एंटायरिटी टू बी आइडेंटिफाइड विद दी. क्या चीज हम भगवान से हमें मांगनी चाहिए और मांग सकते हैं, हमारा अधिकार है कि पूरी तरह आपसे हम एक हो जाएं. सच तो यह है कि योग का दूसरा ध्येय नहीं होता. ट्रेडिशनल योग में सोल भगवान के साथ मिलन, एक होना, ये ध्येय है. और शेरविंद के योग में केवल सोल नहीं, हमारा मन, प्राण, हृदय, शरीर, एक एक कोशिका का एक हो जाना, ये एक्सटेंशन है. ट्रेडिशनल योग में केवल सोल की बात है और इस योग में भी यूनियन विद द डिवाइन, लेकिन वो यूनियन प्रकृति के साथ भी यूनियन है. इटर्नली दाओ, आपसे एक हो जाए पूरी तरह, मर्ज फॉर एवर इन दाई रियालिटी, शाश्वत रूप में मर्ज हो जाए. विलय नहीं कह रही है, मर्ज हो रही. इटर्नली दाओ मतलब शाश्वत रूप में आपके साथ आइडेंटिफाइड रहे, एक होके रहे. अब ये तो बहुत सुंदर एस्पिरेशन, ये हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए ऑफर करके भगवान के साथ एक होने की. यही एकमात्र योग की एस्पिरेशन है. बाकी सब जो है, मैं स्वस्थ हो जाऊं, मेरे बच्चे ठीक रहें, मेरे परिवार का ठीक हो, मेरी ये पूरी हो जाए, वो पूरी हो जाए, ये सब डिस्ट्रैक्शन है. इनका औचित्य है जब हम योग में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर रहे हैं, एक हेजिटेशन रह रहा है बीच में, तो इट इज़ ऑल राइट. इनकी अपनी जगह है आर्थ और अर्थार्थी की. लेकिन प्रॉपर योग तब शुरू होता है जब माँ कहती है डिवाइन फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन, यूनियन विद द डिवाइन, और कोई दूसरा ध्येय नहीं होता. लेकिन अब माँ पूछ रही है, बट इज इट रेडी फॉर दैट? इज दाई वर्क होली एकम्प्लिस्ड? क्या आपने तैयार कर दिया मुझे पूरी तरह? ये हम लोग नहीं पूछते हैं, हम तो अधिकार के रूप में लेते हैं. हमारे अंदर जल्दी जल्दी सारा रूपांतरण हो जाए, चपाती तैयार हो जाए. आटा ज्यादा गीला होगा तो चपाती नहीं बनेगी, हलवा बनेगा, आटे का हलवा. लेकिन अगर रोटी बनानी है, अगर लच्छा पराठा, तो तैयारी वैसी होनी है. तो सैम पूछ रही है, कहती क्या मैं तैयार हूं इसके लिए? सोचिए किस सिंसेरिटी के साथ उन्होंने जीवन जिया है और हम लोग कितने अधीर हो जाते हैं. तो अंतिम श्वास तक पूछ सकते हैं हम, एम आई रेडी? माता जी का एक मैसेज है, 70 या 71 समड़ी में से, माँ केवल न्यू ईयर मैसेज देती थी, ये तीन वर्ड्स का उसके एक साल पहले का मैसेज है, आई थिंक इट इज 70, हाँ 70 है शायद। माँ कहती हैं इट इज दी आवर ऑफ गॉड, 71 में कहती हैं आर यू रेडी, आर यू रेडी। फिर वो कहती हैं ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड द फ्यूचर, क्या हम तैयार हैं? अभी भी हम कितनी कितनी पुरानी चीजों से जुड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। आर यू रेडी? तो माँ पूछ रही हैं एम आई रेडी। इज दाई वर्क होली एकम्प्लिश्ड, क्या तैयारी का काम पूरा हो गया है? इज देयर इन इट नो लॉन्गर एनी शेडो इग्नोरेंस और लिमिटेशन? हम सब इसी प्रश्नों को अपने अंदर देख सकते हैं। कैंस दाउ एट लास्ट टेक डेफिनेटिव पोजिशन ऑफ इट एंड इन द मोस्ट सबलाइम द मोस्ट इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सट्रिकेट इट फॉर एवर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड मेक इट लिव इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ। तो कैंस दाउ एट लास्ट टेक डेफिनेटिव पोजिशन ऑफ इट, भगवान का आह्वान करें कि पूरी तरह इस घर को, देह को, मन प्राण को आप अपने अधिकार में ले लो। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि कुछ लोग हैं जो अपना घर बेच देते हैं किसी को, लेकिन उस घर में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं। आपने किसी को बुला लिया, हमारा घर है आप रहिए। अब वो रहने आए तो देखा इस घर में तो ऑलरेडी टीनेंट्स हैं, वो तो छोड़ नहीं रहे। आप ये चाह रहे हो कि वो जो व्यक्ति आ रहा है वो भगाए उन टीनेंट्स को, तो भगाएगा वो, अगर वो पावरफुल है तो भगाएगा, लेकिन वो देखिए कितना बड़ा युद्ध होगा। तो हम जब भगवान का आह्वान करते हैं कि हमारे मन प्राण शरीर में आप आ जाओ, तो हमें ये देखना है कि क्या हमने इसके अंदर जो टीनेंट्स, जो क्या बोलते किराएदार, किराएदार की तरह हमने पाले हुए राक्षस असुर, हम उनसे क्या किराया लेते हैं? प्लेजर, हमको थोड़ा प्लेजर चाहिए। तो कहते हैं ठीक है हमको थोड़ी जगह दे दो, तुम्हारे इस ऑर्गन में जगह दे दो, तुम्हारे हाथ में, मस्तिष्क में, ब्रेन में थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी हार्ट में जगह दे दो, और ऐसे वो बस जाते हैं हमारे अंदर। फिर हम कहते हैं भगवान आओ। अब भगवान अगर युद्ध करके इनको निकालें, निकाल सकते हैं भगवान, लेकिन अगर हम उनको पकड़ के रखेंगे तो हम ही अंत में शतविशत होंगे। हमारा शरीर, हमारा मन प्राण एक बैटल फील्ड बन जाएगा, कुरुक्षेत्र। इसलिए बेहतर ये होता है कि हम उनको धीरे धीरे, रिजेक्शन इसीलिए इस योग में आवश्यक है। कम से कम हमारा संकल्प ऐसा होना चाहिए कि ये सब जाएं। अगर हम उनको रोक के रखेंगे तो समस्या होगी। और रादर दाउ आर्ट माई सेल्फ डाइवेस्टेड ऑफ ऑल एरर एंड लिमिटेशन, हैव आई बिकम इंटीग्रली दिस ट्रू सेल्फ इन एवरी एटम ऑफ माई बींग। माँ तो किस हद तक जा रही है, एक अणु के अंदर कोई स्पंदन ना आए किसी और प्रकार का। कॉन्स्टेंटली अणुओं के अंदर, ये तो कनेक्टेड है ना पूरी सृष्टि के साथ, हम लोग अगर किसी को स्पर्श भी करते हैं तो उसकी चेतना का कोई भाग हमारे अंदर आता है, एंड वाइस वर्सा। एक जगह लिखते हैं शेयरविंस, टच का की इतनी वैल्यू होती है। आप देखिए कंटेजियन के थ्रू कितनी सारी चीजें हमारे अणुओं को आड़ोलित करती हैं, आंदोलित करती हैं, चर्न करती हैं, एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं, कि तो हम लोग चाहते हैं कि बस झट से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। होता है माँ की कृपा से, माँ के प्रति खुले रखने से, ये प्रोसेस है, लेकिन हमको उसकी कठिनाई को समझना है। विल दाओ ब्रिंग अबाउट एन ओवरवेलमिंग ट्रांसफॉर्मेशन? अब यहाँ पे दो तरीके हैं रूपांतरण के, एक ओवरवेलमिंग सडन चेंज, रात को सोए भगवान की प्रार्थना करके, सुबह उठे तो हमारे सारी देह से कांति निकलने लगी, गोल्डन हो गया, सारी समस्याएं दूर हो गई। हम इस मिरेकुलस चेंज को रूपांतरण समझते हैं। माँ बार बार बाद में कहती हैं, यहां तो वो प्रश्न के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं, कि मिरेकुलस कन्वर्शंस आर ऑलवेज सस्पेक्ट। आज नहीं तो कल वो जो अंदर प्रॉब्लम है वो बाहर आती है और आपको उसको डील करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहती हैं कि क्या ओवरवेलमिंग ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि अचानक आप आ जाओगे और सब कुछ बदल जाएगा, या Or will it still be a slow action in which cell after cell must be torn out from its darkness and its limits? यही प्रोसेस जो दूसरी प्रोसेस है इसको मैं एजेंडा में बहुत विस्तार में डिस्क्राइब करती हैं. ये जो द सुप्रीम बुक है मोनादार ने जो रिकॉर्ड किया है माँ के कन्वर्सेशन, उसमें भी ये प्रोसेस डिस्क्राइब्ड है. माँ कहती हैं कि मैं बहुत ही पेनस्टेकिंग काम है, ये कोई साधारण काम नहीं है. तो एक एक सेल्स को हम लोग तो जानते भी नहीं, कोशिकाओं को, ऑर्गन्स को भी नहीं जानते. माँ कहती हैं एक एक कोशिका को मैं देखती हूँ, उसको निकालती हूँ, उससे पूछती हूँ तुम्हें रूपांतरण चाहिए. अगर वो हाँ करती है तो उसके अंदर मैं उस नव प्रकाश को भर करके एक तरफ रख देती हूँ. फिर एक जगह बताती है कि बहुत सारी ऐसी न्यू सेल्स तैयार हो गई हैं, लेकिन कुछ हैं जो रिफ्यूज कर रही हैं, रेजिस्ट कर रही हैं. इसी में 17 नवंबर का रहस्य भी छिपा है 1973 का, कि जो सेल्स तैयार होती गई उनको मां नए शरीर, नए रूप में, न्यू बॉडी में उनको ट्रांसफॉर्म, मतलब एक अरेंज करती रही. और कुछ जो थी जो बिल्कुल उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, रेजिस्ट किया, तो वो सारा फिर वो छोड़ के यहाँ पर. इसलिए वो कहती हैं पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वो कनेक्टेड है पूरे संसार की गतिविधियों के साथ. इसी कंटेक्स्ट में हमको देखना चाहिए कि नया शरीर जब ये कहा जाता है विल बी सेक्सलेस, उसमें भोजन की भी व्यवस्था नहीं रहेगी, क्योंकि जो जो चीज़ें तैयार थी रूपांतरण के लिए उनको इंटीग्रेट कर लिया गया है. तो माँ कहती हैं कि ये दो प्रोसेस हैं, एक है तो भगवान आए, उनकी शक्ति आई, ऊर्जा आई और पूरी तरह सब चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है. हालांकि यहाँ पर माँ कह रही हैं दोनों संभावना है, किंतु बाद में वो दूसरी संभावना की बात करती हैं, या एक एक सेल्स को ये मैं चेंज करती चली जाऊं. अब कल्पना कीजिए शरीर के अंदर कितनी बिलियंस ऑफ सेल्स हैं. अब वही काम माँ ने अपने अंदर कंप्लीट किया, हम सबके अंदर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं सेल्स क्या होती हैं. लेकिन हम लोग जब माँ के प्रति खुलते हैं, माँ ने एक जगह कहा जब सतप्रेम पूछते हैं कि ये तो बहुत कठिन काम है, बहुत पीड़ा होती है, सेल्स रिफ्यूज करती हैं, उनके अंदर आप प्रकाश डाल रहे हो, कहती नहीं, उनको तो आदत नहीं है प्रचंड तेज को. श्री अरविंद ने एक जगह सावित्री में लिखा है ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स, लेकिन उनकी तो तैयार नहीं, वो डिजॉल्व हो रही हैं बार बार. माँ उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल के, पर वो डिजॉल्व होने लगती हैं. आप देखिए एक कैसा कैलिब्रेटेड काम है एक वैज्ञानिक की तरह. तो सत्प्रेम पूछता है माँ से कि माँ ये तो बहुत कठिन है, ये कौन कर सकता है, हम लोग तो जानते भी नहीं है सेल्स को, ये कैसे होगा. माँ कहती है तुमको कह कौन रहा है करने के लिए, ये शरीर को, इस शरीर को ये कार्य दिया गया है करने के लिए, तुम्हें तो केवल मेरे प्रति खुलना है. बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहती है तुमको मेरे प्रति खुलना है, तुम्हें स्मरण नहीं है श्री अरविंद ने क्या कहा है, ऐसे माँ बताती है, तुमको मेरे प्रति खुलना है, काम तुम्हारे अंदर मैं करूंगी. लेकिन एक एक पार्ट पर जब काम होगा, वो प्रचंड शक्ति जब कार्य करेगी बॉडी ऑर्गन के ऊपर, सेल्स के ऊपर, ना जाने क्या रिएक्शंस होंगे इनके अंदर. इसीलिए माँ कहती है इट्स एन एडवेंचर. अंत में कहती है दाउ आर्ट द सॉवरेन रेडी टू टेक पोजिशन ऑफ थाई किंगडम, डोस्ट थाउ नॉट फाइंड थाई किंगडम येट सफिशियंटली रेडी फॉर दी टू यूनाइट इट डेफिनेटिवली टू थाई सेल्फ एंड बिकम वन बॉडी विद इट. अब देखिए हम लोग 24 नवंबर 1926 को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सुंदर बात है. देखिए माँ ने उसको सिद्धि दिवस, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम उनके एक एक सेल्स के अंदर विराजमान हो रहे हैं, इसके बारे में वो कुछ नहीं बता रही हैं. इट्स ए, देखा जाए तो एक ग्रेट इवेंट, मच ग्रेटर इवेंट, लेकिन माँ उसको चुपचाप करती जा रही है. इसलिए कहती हैं आई हैव नॉट कम हियर टू बी वर्शिप, जिसको लोग बड़े दूसरे ढंग से कि अच्छा माँ ने स्वयं कहा है आई हैव नॉट कम हियर टू बी वर्शिप, तो उसका लॉजिकल कंक्लूशन निकालते हैं देयर फॉर वी शुड नॉट वर्शिप हर. इससे बड़ी फुलिश कोई चीज़ हो नहीं सकती. माँ ये हमें बता रही हैं कि हम अपना गुणगान कराने नहीं आए हैं, हम कार्य करने के लिए आए हैं. आई हैव कम हियर टू वर्क फॉर दी लेट देम वर्शिप दी टू दाई देयर हार्ट्स कंटेंट. अब ये काम है एक एक सेल्स. अब इसको अगर हम प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाएं तो हर कुविचार, हर दुर्भावना, हर कामना, हर वासना, हर इस तरह के जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी सेल्स में पॉइजन के रूप में है. वो उनको पल्यूट करते हैं, उनकी स्वच्छता शुचिता सब खराब करते हैं, और वो काम माँ को करना पड़ता है. यही चीज़ वो द्युमन भाई को कहती हैं, जब एक बार एक कौवे ने बीट कर दी थी माँ के बालकनी जो है उस पर, माँ उसको साफ कर रही थी, तो द्युमन भाई ने देखा, भागे भागे गए, माँ माँ ये मैं करता हूँ. माँ हंस के कहती है, तो कुछ भी नहीं है, मानव चेतना के अंदर जो मुझे रोज सफाई करनी पड़ती है, तो ऐसा काम है जिसकी बात मैं कर भी नहीं सकती हूँ. कहा जाता है और ये सच ही है कि समाधि के पास 11 से 4 जो बंद रहता है द्वार, देवता आकर के सफाई करते हैं. पहले क्या चीज साफ करनी पड़ती है उन्हें, उन्हें वो जो मनुष्य अपने अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे जितने भी वासनाएं लेकर के वहां बैठा हुआ है, उड़ेल रहा है उड़ेल रहा है, वो सब देवता आके रात में साफ करते हैं. अंत में कहती हैं, विल द ग्रेट मिरेकल ऑफ द इंटीग्रल डिवाइन लाइफ इन द इंडिविजुअल बी अकम्प्लिश्ड एट लास्ट. तब डिवाइन लाइफ की बात कर रही है मां 1916 में. एक ही मिरेकल की हम लोगों को चेष्टा और आशा करनी चाहिए. सच तो ये, क्योंकि उस मिरेकल में सारे मिरेकल समाए हुए हैं. वो मिरेकल है मिरेकल ऑफ डिवाइन लाइफ. ये चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये इनफैक्ट सबसे बड़ा चमत्कार, क्योंकि इसके बारे में मानव, इवन मानव चेतना की तो बात ही क्या है, इवन जो आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, संत महात्मा रहे हैं, उन्होंने भी इसके बारे में सोचने तक की का साहस नहीं किया. ये वैसा मिरेकल है. अम्मा कह रही हैं, विल इट बी अकम्प्लिश्ड एट लास्ट. ये 1916 में कह रही हैं. ये जनवरी 15 की है. जनवरी 22 को कहती है, दाउ हैज टेकन एंटायर पोजिशन ऑफ दिस मिजरेबल इंस्ट्रूमेंट. तब वो आवाहन कर रही है. मां कहती है कि शुरू में हमको पुल नहीं करनी चाहिए फोर्स को, बाद में जब हम तैयार हैं रेडी हैं तब हम पुल कर सकते हैं, उस तब हम भगवान का आवाहन कर सकते हैं. तो माँ यहाँ कह रही हैं, thou has taken entire possession of this miserable instrument, and if it is not yet perfected enough for thee to complete its transformation, its transmutation, thou art at work in each one of its cells to need it. फिर से कह रही हैं, सेल्स की बात कर रही हैं, और कह रही हैं कि अगर ये पूरी तरह तैयार भी नहीं है तो अब आपने ये काम शुरू कर दिया है. अब समझ आएगा आपको कि कई लोग आश्रम में जो बहुत पुराने साधक हैं, उनको कई बार पीड़ा के द्वार से, शारीरिक पीड़ा के द्वार से क्यों गुजरना पड़ा. अक्सर लोग पूछते हैं, पवित्रता के बोन कैंसर, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस बोन के अंदर, क्योंकि जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है, माँ इसको बाद में, इन्होंने इस प्रोग्राम को बीच में स्थगित कर दिया था क्योंकि अन्य चीज़ें आ गई, फिर लोग जुड़ गए, तो श्री अरविंद माता जी ने डिसाइड किया, लेट अस टेक एवरीबडी टुगेदर. माँ बताती हैं कि इसके कारण हमारा काम 30 साल डिले हो गया, लेकिन बाद में कहती हैं, इन ए वे इट इज़ फाइन, जो प्रॉब्लम बाद में आती है वो हम लोगों ने ले ली थी. ये कार्य ये रिकनेक्ट करती हैं माँ. कब रिकनेक्ट करती हैं? ये 56 के बाद, बट मेनली 61-62 के बाद. उसके बाद वो पूरी तरह अपने को विड्रॉ कर जाती हैं, क्योंकि संसार तैयार नहीं था. इमेजिन अगर एक रूपांतरित शरीर तैयार हो जाए और बाकी आसपास कुछ भी तैयार नहीं है, उसकी जो ऊर्जा विस्फोट होगा, इट इज लाइक सेइंग सूर्य हमारे बीच में चलने लगे, कितना अच्छा रहेगा. अच्छा तो बाद में होगा, कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा वो दूसरी बात है. लेकिन ये इसी धारा पर आगे वो इस कार्य को ले जाती है, क्योंकि हम तैयार नहीं थे. तो काम क्या है, वो सेल्स पर ये प्रकाश, ये शक्ति, प्रचंड शक्ति, प्रचंड प्रकाश, क्रिएटर का प्रकाश है. सुपर माइंड क्या है? क्रिएटर है. वो पूरी शक्ति उनकी एक एक सेल्स पर काम करी, कोशिका पे. एक क्षण को हम ये सोचें कि हम साधारण सूर्य का भी प्रकाश होता है तो झेल नहीं पाते हैं. और उस प्रचंड सूर्य का, जो सूर्य का भी सूर्य है, उसकी चेतना। इसीलिए लोग ये कहते हैं ये तो असंभव है, लेकिन उसके बिना धरती की समस्या हमेशा, वो तो क्रिएशन क्रिएटर के साथ एक हो नहीं पाएगा, और यदि एक नहीं होगा तो उसके अंदर पीड़ा दुख कष्ट रहेगा, और पीड़ा कष्ट दुख यदि किसी भी रूप में रहेगा तो परफेक्शन नहीं है। तो पहले वो इस कार्य को अपने अंदर, उमा बताती हैं जब पहली बार 1960 में वो फिर से वो रिकनेक्ट करती इस काम से, और वो कहती हैं सुप्रामेंटल एनर्जी फोर्स मेरे ब्रेन के अंदर पेनेट्रेट करने लगी, और तब वो कहती हैं उनको ऐसा अनुभव हो रहा था मानो सिर पूरी तरह हजारों टुकड़ों में फट जाएगा, इतनी प्रचंड शक्ति। क्योंकि वो तो फिर विशालता की ओर ले जाती है एक ऑर्गन को, एक एक चीज को। एक और समय जब ये वो अनुभव करती हैं कि वो ईगो को डिसॉल्व करने लगती है, फिजिकल ईगो वो शक्ति, तो माता जी कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि मेरी सारी सेल्स निकल करके कहीं चली जा रही हैं, डिफ्यूज हो जा रही हैं। ये इट्स नॉट ईजी कि शरीर इतना रिजू हो जाए कि वो, सुनने से लगता है कि ये तो एक कल्पना है, लेकिन भगवान की कल्पना और उनका स्वप्न मनुष्य के तथ्यों से अधिक सही होता है। इसीलिए श्री अरविंद इसको इतने विस्तार से समझाते हैं, बंदर के अंदर रूपांतरण को, कि अगर उससे पूछा जाता तो वो कहता मनुष्य तो एक कल्पना है। तो ये एक काम है, thou art at work in each one of its cells to knead it and make it supple and illuminate, supple बना रहे हैं मत्ते ना, वो धीरे धीरे वो गूंथना, सपल एंड इल्यूमिनेट, उसके अंदर प्रकाश पैदा हो रहा है, एंड टू क्लास ऑर्गेनाइज एंड हार्मोनाइज इट इन द एनसेम्बल ऑफ द बीइंग, एकदम एक नई एनाटमी, नई साइंस, जहां वो जो जो सेल्स तैयार हैं उनको एक जगह प्रस्तुत किया जा रहा है, एनसेम्बल, उनको जोड़ा जा रहा है, नए कॉम्बिनेशन बनाए जा रहे हैं इन सेल्स के साथ। तभी तो माता जी की बॉडी, जब वो लोग देखते थे बालकोनी में, कई बार लंबी नज़र आती थी, कभी छोटी नज़र आती थी, और लोग नहीं समझ पाते थे, उनकी बॉडी रेडिएट करती थी, रेडिएंट हो जाती थी श्री अरविंद के साथ भी, और उन्होंने उनको कितना संवरण करना पड़ता था इसको, माँ कहती हैं। इसीलिए केवल दर्शन डे के दिन कुछ क्षणों के लिए, तब वो तब भी वेल पहन करके, वेल मतलब ढक करके, पर वो इतनी प्रचंड ऊर्जा होती थी दर्शन दिवस के दिन, चार दिन जिसकी बात हो रही है, चार दर्शन दिवस, हाँ, लोग आधे मिनट उनके सामने से गुजरते थे और उनका जीवन बदल जाता था। कितने लोगों की ऐसी कलेक्शंस हैं, एकदम जैसे दिशा ही बदल गई, भाग्य बदल गया एकदम, ये कैसी प्रचंड शक्ति। और माता जी कहती हैं यू कैनॉट, एक तांत्रिक आए थे यहाँ पर और वो कहने लगे मेरी शक्ति यहाँ कार्य ही नहीं कर रही है, मैं तो शक्तिपात करना चाह रहा हूँ, हो नहीं रही है। तो उन्होंने किसी को कहा, तो अमृत दा ने माँ से पूछा, माँ हंसने लगी, कहती है वो जहाँ अपार प्रचंड पराशक्ति के क्षेत्र में आ गया है उसकी शक्ति क्या कार्य करेगी। ये वो प्रचंड ऊर्जा, प्रचंड शक्ति, वो तो माँ की कृपा है कि जल्दबाजी नहीं कर रही हैं। हम सबका फ्यूज वैसे ही उड़ा हुआ है कौन आता है योग साधना में, थोड़ा तो फ्यूज ढीला होना चाहिए, एकदम नॉर्मल होगा तो नॉर्मल एम, नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, घर द्वार, बीवी बच्चा, दुकान, रोटी कपड़ा मकान, यही करता है। ये लक्ष्य आना मतलब कोई तो फ्यूज अंदर में आपका हो गया ढीला, तभी तो। अगर टाइटली ह्यूमन आप हैं तो आप नहीं सुपरमैन की ओर जा सकते हैं, आप बड़े संतुष्ट हैं मनुष्यता में, तो थोड़ा भगवान पहले ढीला करते हैं, उसके बाद में उस जो गैप है, जो संसार कहता है कि ये तो एक्सेंट्रिक है इन ए हायर सेंस, उस गैप से भगवान, वो गैप कहां से, एस्पिरेशन, जब वो डालना प्रारंभ करते हैं तो मनुष्य के लिए सहना, वहन करना कठिन हो जाता है उस प्रचंड, क्योंकि आप फ्यूज उड़ सकता है। तो धीरे 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 तैयार करती हैं, जिसको इस प्रोसेस से डर लगता है वो तैयार नहीं है माता जी, इसलिए कहती इफ यू आर अफ्रेड डू नॉट डू दिस योगा। इनफैक्ट कहती अगर तुम्हारे अंदर किसी तरह का भय है तो तुम योग के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि भय भी उठता है कई बार, कुछ कई लोगों को सुना है मैंने, जब ये फोर्स काम करती तो फियर राइजेज अप। किस चीज का फियर? वो शरीर जो हम समझते हैं कि यही सब कुछ है, वो तो अब नहीं रहेगा, कुछ और आएगा उसकी जगह। तो जो प्रोसेस होती है उसमें एक अवचेतना में भय भी उठता है, बहुत कुछ उठता है। इसीलिए माँ एक लंबे समय तक फेथ की जरूरत है, साहस की जरूरत है, बार बार एस्पिरेशन से तैयारी होती है, समर्पण से तैयारी होती है, ऑफरिंग से तैयारी होती है। ऑल इज इन मोशन, ऑल इज चेंजिंग, सब कुछ उसके बाद प्रारंभ हो जाता है। बहुत लोगों का ये अनुभव है जब वो योग में आते हैं। माँ से किसी ने पूछा, जब हम योग में आते हैं तो कई बार सब कुछ छिन जाता है हमारे हाथ से, तो माँ कहती सबके साथ नहीं होता है, जो सिंसियर है उनके साथ होता है। वो चीज़ें जो हमको लगता था ये हमारी बड़ी अपनी है, क्योंकि अब आपकी नियति बिल्कुल बदल गई। इसके पहले नियति एक ओल्ड कॉन्शियसनेस के आधार पर चल रही थी, अब अचानक आप हवाई जहाज में बैठ गए या बुलेट ट्रेन में बैठ गए, पटरी बदल गई ट्रेन की, दिशा बदल गई। अब कौन चल पाएगा उसके साथ, कौन नहीं चल पाएगा, वी डोंट नो, सब कुछ बदल जाता है। तो माँ बता रही है इट इज चेंजिंग अंदर भी और बाहर भी। The divine action makes itself felt as the inexhaustible source of a purifying fire that circulates through all the atoms. Literally, अग्नि का अंदर में अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है कि जैसे एक अग्नि अंदर में सब कुछ जला रही है, पवित्र कर रही है, प्योरीफाइंग फायर। यही होता है चिता पर बैठना, यही होता है तप अग्नि के ऊपर, जिसको हम लोग अपने बाहरी ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। देह के अंदर पूरी वो, इसी को श्री अरविंद कहते हैं, इन बॉडी इज एंड बॉडी शैल बी किंडल द सीक्रेट फायर। शरीर के अंदर वो अग्नि जलने लगती है, तो वो जो अग्नि जलती है उसका ताप सहन करना, लेकिन वो प्योरीफाइंग फायर है, पवित्र करने करती है। एंड दिस सोर्स हैज ब्रॉट इन टू द बीइंग एन एक्सटेसी मोर मार्वेलस देन ऑल दैट इट हैज एवर फेल्ट बिफोर। और फिर उससे एक आनंद का जन्म देता है। पूरा वेद का योग है लेकिन शरीर के सेल्स में हो रहा है। अब यहां पर एक एक जो सेल्स है, एक एक जो कोशिका है, वही यज्ञवेदी बन गई, यानी असंख्य यज्ञवेदी अपने अंदर जल उठी है। सो टू thy एक्शन answer the एस्पिरेशन ऑफ दैट ऑन which thou art at work, एंड the एस्पिरेशन इज ऑल द मोर ardent बिकॉज द instrument हैज सीन itself as इट इज इन ऑल इट्स infirmity। सबसे पहले क्या दिखाई देता है? इन्फर्मिटी, वीकनेसेस सामने उजागर हो जाती है। योग के पहले हम बहुत अच्छे हैं, हम तो असली कैंडिडेट हैं, बाकी सब तो कई बार लोग यहां भी जब आते हैं तो उनको समझ नहीं आता। आश्रमाइट को देखते हैं पुराने, वो इमिजिएटली जज करने लगते हैं, आपको पता नहीं है वो किस आग की सीढ़ी से गुजरे हैं, यू डोंट नो। इसलिए लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि प्योरीफाइंग फायर जब लगती है तब आपको अपनी वीकनेसेस का ज्ञान होता है। जब तक हम अपनी वीकनेसेस को नहीं देख पा रहे हैं, दुनिया की कमजोरी देख रहे हैं, तब तक अभी प्रारंभ नहीं हुई है वो अग्नि का जलना। अग्नि पहले क्या करेगी? आपको इमिजिएटली दिखाएगी ना घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी कोई दूसरे को के अंदर घर में क्या हो रहा है। आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो सारी वो दिखाएगी। बहुत पेनफुल होती है, कई लोग इससे आंखें चुराते हैं, कई लोग इसको सहन नहीं कर पाते हैं, कई लोग इस अपनी जो अंदर वीकनेसेस उसको दूसरों में देखने लगते हैं, प्रोजेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनको कठिन होता है उस ताप को। तो माँ कह रही है अब मैं सब देख पा रही हूँ मेरी ही कमजोरियों को, इनफर्मिटी वीकनेसेस को, और इसीलिए वो कह रही है एस्पिरेशन को और बढ़ाना है। वीकनेसेस देख के नहीं कि मेरे अंदर ये तकलीफ है, ये वीकनेस है, नहीं, और एस्पिरेशन। O Lord, hasten, I implore thee, the blessed day when the divine miracle will be accomplished. Hasten the day of the realization of the divine upon earth. वो कह रही कोई बात नहीं, प्रचंड अग्नि और जला रही है, increase the aspiration. January 23rd में वो फिर से इस gross form में जो भगवान हैं उनकी बात करती हैं, और फिर से कह रही हैं, लॉर्ड लॉर्ड टेक पोजिशन ऑफ दाई किंगडम. ये देखिए राज्य कैसे भगवान का स्थापित होगा, पहले अपने अंदर तो हो. इल्यूमिनेट विद द इटर्नल प्रेजेंस, मेक द क्रूएल एरर सीज इन विच इट लिव्स. क्रूएल एरर क्या है? उसी अज्ञान, सफरिंग, पीड़ा, इसी जी को जीवन. लोग बड़े खुश होते हैं इसमें, खुश मतलब वो उसी को अपना सब कुछ समझते हैं. थिंकिंग इटसेल्फ सेपरेट फ्रॉम दी, सबसे बड़ी ये अज्ञान का क्या साइन है, मैं भगवान से अलग हूं. उसी से ये बात जन्म लेती है. जब हम ये कहते हैं भगवान सब कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो क्या किया हमने? अनकॉन्शियसली, अनविटिंगली हम कह रहे हैं भगवान कहीं और है, कुछ और है, हम कुछ और हैं. लेकिन यदि सच में सब कुछ भगवान है, तो हमको अपना भाग तो प्ले करना है. हम भगवान के हिस्से हैं, भगवान ही हमारे अंदर वो बने. बाकी सब भी भगवान है, लेकिन उनके अंदर भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनकी समस्या है. लेकिन चूंकि हम भी भगवान बन चुके हैं, भगवान हमारे अंदर बने हैं, हम बने हुए हैं, उन्होंने स्वयं को इसके अंदर भी डाला हुआ है, हम भी भगवान का एक हिस्सा हैं, तो हमको उस पार्ट पे अपना काम करना है, चाहे जो भी हो, जितना भी हो. लेकिन सबसे बड़ी जो एरर है, क्रूएल एरर माँ कहती है, जिससे सारी विकृतियां जन्म लेती हैं, थिंकिंग इट्सेल्फ सेपरेट फ्रॉम दी whilst in its reality and essence it is thyself. हम भगवान से अलग हैं, भगवान कहीं दूर हैं, वो चला रहे हैं दुनिया, हम यहां पर चल रहे हैं, हम कठपुतली हैं, ये सारी विंडो के बाहर फेंकनी है हमको धारणा है. भगवान ही है जो यह मन प्राण शरीर बने हैं, भगवान ही है जो हमारे अंदर मिनिएचर सोल के रूप में व्याप्त है, भगवान ही है जो हमारे इस शरीर के अंदर इनहेबिट करते हैं, और हमको अपना पार्ट प्ले करना है. फिर एक लंबे समय तक माँ कुछ नहीं लिखती हैं. जनवरी के बाद वो June 7, 1916 को लिख रही हैं. उसमें सारा वो धीरे धीरे बताती हैं कि कैसे उन्होंने उनके अंदर काम किया, प्राण तत्व के अंदर काम किया, कैसे कैसे वो एक एक वीकनेस को हटा रहे हैं भगवान. लेकिन उसमें एक बात बस जो पढ़ेंगे हम लोग, कि जब ये चेंज आता है, बीच में ये चेंज आ रहा है उनके अंदर, अब उनको वापस जीवन में जब आ रही है एक्टिविटी, तो वहां पर वो कहती हैं, दिस रिटर्न टू एक्टिविटी इंप्लाइड ए कंप्लीटली न्यू एडेप्टेशन ऑफ द वाइटल इंस्ट्रूमेंट, फॉर इट्स नेचुरल टेंडेंसी इज ऑलवेज टू एंगेज इन एक्शन विद इट्स ओल्ड हैबिट्स एंड मोड्स. ये जो परिवर्तन आता है बहुत कठिन होता है, और ये दिखता है हर बार जब आदमी एक स्टेप क्रॉस करता है, तो एक नए तरीके से, यानी कोई व्यक्ति अगर ओवर द ईयर्स उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो समवेयर समथिंग इज रॉन्ग. वही एक्टिविटी रहेगी, लेकिन उसके अंदर एक चेंज आएगा, एक प्रोग्रेस होगी, एक नई चीज प्रकट होगी. दिस पीरियड ऑफ एडेप्टेशन वॉज लॉन्ग, पेनफुल, समटाइम्स ऑब्सक्योर, ऑल्दो बिहाइंड द परसेप्शन ऑफ दाई प्रेजेंस एंड द परफेक्ट सबमिशन टू दाई लॉ वी आर अनचेंजिंग एंड सफिशेंटली स्ट्रांगली कॉन्शियस सो दैट नो ट्रबल कुड शेक द बीइंग. ये हमारी जो प्राण तत्व है, जो शरीर है, धीरे 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 अडेप्ट करता है. जो नई ऊर्जा है, नई शक्ति है, नया प्रकाश है, उसमें वो देखने लगता है चीज़ों को. वे चीज़ें जो उसको सहज स्वाभाविक पुराने मान्यताओं के अनुसार लगती थी, वो अपने आप ड्रॉप हो जाती हैं. और ये जो रूपांतरण है, अडेप्ट करना, ये बहुत कठिन होता है. अंत में माँ कह रही हैं, ओ लॉर्ड दाउ हैस्ट अगेन टेकन अप दाई इंस्ट्रूमेंट इन हैंड टू यूज इट फॉर एक्शन. तो इस योग में ऐसे दोनों फेजेज आते हैं, एक जब आप एक्शन में ज़्यादा एंगेज नहीं हो, तैयारी हो रही है, फिर आप एंगेज होते हो एक्शन में, अडेप्ट करते हो, फिर आप कुछ देर विड्रॉ करते हो, फिर आप एक्ट करते हो, फिर एक समय आता है जब ये कांस्टेंट एक्शन आता है. माँ के जीवन में अगर हम देखें तो दिस इज द प्रोसेस. O Lord, thou hast again taken up thy instrument in hand to use it for action. The instrument is aware of its imperfection and impurity and implores thy mercy to perfect and purify it. so that from day to day it may in a progressive disappearance. Ab purity kya hai? Yahan moral purity, ethical purity, ascetic purity iski baat nahi ho rahi hai. Purity ko maa yahan define kar rahi hai. Kya hai purity? So that in a progressive disappearance of all its preferences and limitations, more integrally manifest thi. Maa ek jagah kehti hai, purity kya hai? Maa kehti hai, to be completely under the divine influence. Wo purity hai. Preferences kya hote hai? Raaste mein aate hai. Aisa hona chahiye, main chahta hoon aisa ho, mere anusaar cheeze nahi hui. ये सब हमारे अंदर इम्प्योरिटी है. और कोई यहाँ प्योरिटी से केवल एक ही अर्थ है, मॉरल प्योरिटी, एथिकल प्योरिटी आवश्यक है जब हम अज्ञान के घेरे में रहते हैं, नहीं तो हम बुरी तरह नीचे कीचड़ कादों में चले जाएंगे. लेकिन जिस प्योरिटी की इसमें आवश्यकता है कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रेफरेंस नहीं, जैसे आप नचाओगे वैसे हम नाचेंगे, जैसे आप चाहोगे वैसे हम जिएंगे, जिस अवस्था में रखोगे उस अवस्था में रहेंगे, और किसी भी पार्ट में कोई कंप्लेंट नहीं. शरीर का योग की बात हो रही है तो जब शरीर के विषय में माता जी से किसी ने पूछा कि फिजिकल एस्पिरेशन का क्या अर्थ है, एस्पिरेशन इन द फिजिकल, माँ कहती है नॉर्मली हमारा शरीर और प्राण, दोनों प्राण के अधीन, केवल कंफर्ट ढूंढता है. लेकिन जब हमारे अंदर कंफर्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. इन दोनों की से हमारे शरीर में समस्या नहीं उत्पन्न हो. आज गर्मी है, आज ठंड है, ये चीज़ें आएंगी. आज ऐसा है, आज ऐसा खाना मिला, कल दूसरा मिला, आज कंफर्टेबल नहीं था. तो जिस समय हमारे अंदर ये प्रेफरेंसेस चली जाएंगी शरीर के अंदर, वो भगवान का काम जैसे वो चाहेंगे हर अवस्था में करेगा, तो वो सही दिशा में जा रहा है रूपांतरण की ओर. और यही मार्ग है जिसमें सब लोग गए हैं. आश्रम के अंदर कोई छुट्टी लेने की परंपरा नहीं है. शुरू से जो लोग काम करते रहे, बारिश में, तूफान में, देखा भी, ये तो यहाँ पर एक नेचुरल चीज है. आप जाते हो अपना, जिसको कहते हैं मीटर आपका चालू है, आप जाते हो माता जी के जो भी काम है वहाँ बैठते हो और फिर चले आते हो. वहाँ क्या काम आएगा नहीं आएगा ये माँ के ऊपर है. क्या चैलेंजेस आएंगे, इश्यूज आएंगे, वो सब आपके योग के साधन है. कोई कुछ कह रहा है नहीं कह रहा है, ये सब आपके अंदर वो योग अग्नि को बढ़ाने का. पर मुख्य काम क्या करते हैं हम कहीं पर भी जाके, एस्पिरेशन को बढ़ाना, समर्पण को बढ़ाना, ऑफरिंग को बढ़ाना, और केवल एक बात की बार बार भगवान से प्रार्थना करना और अभीप्सा करना कि यह शरीर मन प्राण पूरी तरह से आपके अधिकार में आ जाए, और धीरे धीरे ये सारी पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए. यही वो दिव्य जीवन का योग है जो श्री मां श्री अरविंद हमको बता रहे हैं. छह माह